नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और सहारनपुर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के आरोपियों की अवैध रूप से बनी संपत्तियों को गिराने के लिए बुलडोजर सड़कों पर उतर आए हैं। जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य के ठेठ बुलडोजर एक्शन रूट का इस्तेमाल किया है। अब तक हिंसा के आरोपियों की कम से कम 3 संपत्तियों को तोड़ा जा चुका है, 1 प्रयागराज में और 2 सहारनपुर में। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस तैनाती के बीच यहां शुक्रवार की हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर को ध्वस्त कर दिया है। प्रयागराज में पीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जावेद अहमद का घर जेके आशियाना प्रयागराज के करेली इलाके में स्थित है। पुलिस बल और एक जेसीबी मशीन सुबह करीब 10:30 बजे करेली पुलिस स्टेशन पहुंची और दोपहर 1 बजे के आसपास तोड़फोड़ शुरू हुई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस तैनाती के बीच यहां शुक्रवार की हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर को ध्वस्त कर दिया है। प्रयागराज में पीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जावेद अहमद का घर जेके आशियाना प्रयागराज के करेली इलाके में स्थित है। पुलिस बल और एक जेसीबी मशीन सुबह करीब 10:30 बजे करेली पुलिस स्टेशन पहुंची और दोपहर 1 बजे के आसपास तोड़फोड़ शुरू हुई। श्रीलंका में सिलोन बिजली बोर्ड के चीफ ने 2 दिन पहले संसदीय पैनल को बताया कि गौतम अडानी को एक 500 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना देने के लिए नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव डाला था। पहले उनका दावा था कि ये बात उन्हें राजपक्षे ने बताई थी। हालांकि बाद में एक बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि मीटिंग में वो भावुक हो गए थे, जिस कारण उन्होंने झूठ बोल दिया। मोदी को लेकर उन्होंने जो कहा है वो उसे वापस ले रहे हैं। सिलोन बिजली बोर्ड के एक प्रमुख एमसीसी फर्डिनेंडो ने एक संसदीय पैनल के सामने गवाही दी थी कि उन्हें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने बताया था कि पीएम मोदी ने अडानी ग्रुप को 500 मेगावाट की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट देने पर जोर दिया था। वो शुक्रवार को संसद में सार्वजनिक उद्यम समिति की सुनवाई में पेश हुए थे। उनके बयान पर बवाल मचा तो राजपक्षे ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि मन्नार में एक पवन ऊर्जा परियोजना दिए जाने के संबंध में हुई संसदीय समिति की सुनवाई में सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष के बयान के संबंध में जवाब, वो इस परियोजना को किसी विशिष्ट व्यक्ति या संस्था को देने के पक्ष में नहीं है। उन्हें यकीन है कि इस मामले में जिम्मेदाराना बयान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 8 जून को वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य धान के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी की घोषणा की, लेकिन धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुझाव देने वाले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की तुलना में अधिक एमएसपी की सिफारिश की थी। कृषि लागत और मूल्य आयोग की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धान के एमएसपी को उत्पादन और लागत के आधार पर 2000 रुपये प्रति क्विंटल से 4513 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रखने का सुझाव दिया था। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल हैं। बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि समूह की आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली कंपनी दिव्या फार्मेसी ने हार्ट और लिवर से जुड़ी कुछ दवाओं का प्रचार बंद करने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक ये फैसला ड्रग कानूनों का उल्लंघन करने की शिकायतों के कारण लिया गया है। गौरतलब है कि कंपनी की ओर से किए जा रहे प्रचार को लेकर केरल के एक नेत्र विशेषज्ञ ने इस साल की शुरुआत में केंद्रीय आयुष मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देहरादून की दिव्य फार्मेसी की ओर से एक एड चलाया जा रहा है। इसमें दावा किया गया है कि उनकी दवाई लिपिडोम लेने के बाद एक हफ्ते में ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाता है और ये लोगों को हृदय की समस्या से और उच्च रक्तचाप से बचाता है। बाबू ने आगे लिखा कि कंपनी एड के लिए ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार से जुड़ा विज्ञापन नहीं चला सकती है। इसमें हृदय रोग और उच्च रक्तचाप भी शामिल है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों भारत की 3 सेनाओं को विदेशी हथियारों से मुक्ति दिलाने की मंशा व्यक्त की थी। सरकार चाहती है कि रक्षा उपकरणों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। अब इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए लड़ाकू जेट लाने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि 114 फाइटर जेट में से 96 भारत में बनाए जाएंगे, शेष 18 का विदेशी विक्रेता से आयात किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक की है और उनसे फाइटर जेट का निर्माण भारत में करने को कहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया के तहत पूरा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से वायुसेना की क्षमता तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही पुराने हो चुके मिग सीरीज के विमानों को भी बदला जा सकेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।